लाला प्रभाशंकर का क्रोध ज्यों ही शांत हुआ, वह अपने कटु वाक्यों पर बहुत लज्जित हुए। बड़ी बहू की तीखी बातें ज्यों ज्यों उन्हें याद आती थी, ग्लानी और भी बढ़ती जाती थी। जिस भाई के प्रेम और अनुराग से उनका हृदय परिपूर्ण था, उसकी मृत्यु शोक का घाव अभी भरने न पाया था, जिसका स्मरण आते ही आंखों में अश्रुधारा बहने लगती थी, उसके प्राणधार पुत्र के साथ उन्हें यह बर्ताव बड़ी कृतज्ञता का मालूम होता था। रात को उन्होंने कुछ न खाया, सिर्फ पीड़ा का बहाना करके लेटे रहे। कमरे में धुंधला प्रकाश था। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो लाला जटाशंकर द्वार पर खड़े हो उनकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वह घबरा कर उठ बैठे, सांस वेग से चलने लगी। बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि उसी दम चलकर ज्ञानशंकर से क्षमा मांगो, किंतु रात ज़्यादा हो गई थी। बेचारे एक ठंडी सांस खींच कर फिर लेट गए। हाँ, इस भाई ने जिंदगी भर में मेरी ओर कड़ी निगाह से भी नहीं देखा, उसकी आत्मा को मेरे कारण ऐसा विषाद हो, मैं कितना अत्याचारी, कितना संकीर्ण हृदय, कितना कुटिल प्रकृति हूँ। प्रातःकाल उन्होंने बड़ी बहू से पूछा, रात ज्ञानू ने कुछ खाया या नहीं? बड़ी बहू, रात चूल्हा नहीं जला, किसी ने भी नहीं खाया। प्रभाशंकर, तुम लोग खाओ या न खाओ, लेकिन उसे क्यों भूखा मारती हो? भला ज्ञानू अपने मन में क्या कहता होगा, मुझे कितना नीच समझ रहा होगा। बड़ी बहू, नहीं तो अब तक मानो वह तुम्हें देवता समझता था, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा होगा, लेकिन मैं इस छोकरे का रुख साल भर से देख रही हूँ। अचरज यही है कि वह जब अब तक कैसे चुप रहा, आखिर वह क्या समझकर अलग हो रहा है? यही नहीं कि हम लोग पराए हैं? उसे इसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं कि इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा। उसे तो बस रुपए की हाय हाय पड़ी हुई है, चाहे चचा भाई भतीजे जिए मरे, ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर, फिर वही बात मुंह से निकालती हो, अगर वह अपना आधा हिस्सा मांगता है तो बुरा क्या होता है, यही तो संसार की प्रथा हो रही है। बड़ी बहू, तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई है, कहाँ तक तो कोई समझाए, जैसे कुछ सोचता ही नहीं। हमारे लड़के की जान पर बनी हुई है, घर विध्वंस हुआ जाता है, दाना पानी हराम हो रहा है, वहाँ आधी रात तक हारमोनियम बजता है, मैं तो उसे काला नाक समझती हूँ, उसके विष का उतार नहीं। यदि कोई हमारे गले पर छुरी भी चला दे तो उसकी आंखों में आंसू ना आवे। तुम यहाँ बैठे पछता रहे हो और टोले मोहल्ले में घूम घूम कर तुम्हें बदनाम कर रहा है, सब तुम्हीं को बुरा कह रहे हैं। प्रभाशंकर, यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, उसका हृदय इतना क्षुद्र नहीं है। बड़ी बहू, तुम इस तरह बैठे स्वर्ग सपना देखते रहोगे, वह एक दिन सब संबंधियों को बटोर कर बाँट बकरे की बात छेड़ देगा, फिर कुछ करते धरते न बनेगा। राय कमलानंद ने से भी पत्र व्यवहार कर रहा है, मेरी बात मानो, अपने संबंधियों को भी सचेत कर दो, पहले से सजग रखना अच्छा है। प्रभाशंकर ने गौरवोन्मत्त होकर कहा, यह हमसे मरते दम तक न होगा, मैं ऐसा निर्लज नहीं हूँ कि अपने घर की फूट का ढिंडोरा पीटता फिरूँ। ज्ञानशंकर मुझसे चाहे जो भाव रखे, किंतु मैं उसे अपना लड़का ही समझता। हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए प्राण देते रहे, आज भैया के पीछे मैं इतना बेशर्म हो जाऊँ कि दूसरों से पंचायत कराता फिरूँ। मुझे ज्ञानशंकर से ऐसे द्वेष की आशा नहीं, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अहित भी हो जाए तो भी मुझे लेश मात्र भी दुख न होगा। अगर भैया पर हमारा बोझ न होता तो उनका जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो सकता था। ज्ञान उन्हीं का लड़का है, यदि उसके सुख और संतोष के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो तो हमें बुरा न मानना चाहिए। हमारे सिर उसके ऋण से दबे हुए हैं, मैं छोटी छोटी बातों के लिए उससे रार मचाना अनुचित समझता हूँ। बड़ी बहू ने इसका प्रतिवाद न किया, उठकर वहाँ से चली गई। प्रभाशंकर उन्हें और भी लज्जित करना चाहते थे, कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे कि आ जाएं तो दिल का बुखार निकालूं, लेकिन जब तक देर हुई तो उकता कर बाहर चले गए। वह पहले कितने ही बार बड़ी बहू से ज्ञानशंकर की शिकायत कर चुके थे, उसके फैशन और ठाट के लिए वह कभी खुशी से रुपये नहीं देते थे, तो जब वह बड़ी बहू या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञानशंकर से विरोध करते देखते तो उनकी न्यायवृत्ति प्रज्वलित हो जाती थी और वह उमंग में आकर सज्जनता और उदारता की ऐसी डींग मारने लगते थे जिसको व्यवहार में लाने का कदाचित उन्हें कभी साहस न होता। बाहर आकर वह आंगन में टहलने लगे और तेज शंकर को यह देखने को भेजा कि ज्ञान शंकर क्या कर रहे हैं। वह उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु जब उन्हें पैर गाड़ी पर सवार कहीं जाते देखा तो कुछ कह न सके। ज्ञान शंकर के तेवर कुछ बदले हुए थे, आंखों में क्रोध झलक रहा था। प्रभाशंकर ने सोचा, इतने सवेरे वह कहाँ जा रहे हैं, अवश्य कुछ दाल में काला है। उन्होंने अपनी चिड़ियों के पिंजरे उतार लिए और दाने चुगाने लगे। पहाड़ी मैना के हरि भजन का आनंद उठाने में वह अपने को भूल जाया करते थे। इसके बाद स्नान करके रामायण का पाठ करने लगे। इतने में 10 बज गए और कहार ने आकर ज्ञानशंकर का पत्र लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने तुरंत पत्र को उठा लिया और पढ़ने लगे। उनकी इस वंदना में व्यवहारिक कामों में कोई बाधा न पड़ती थी। इस पत्र को पढ़कर उनके शरीर में ज्वाला सिलक गई। उनका एक एक शब्द चिंगारी के समान हृदय पर लगता था। ज्ञानशंकर कितना दम्भी और शालू है इसका कुछ अनुमान हुआ। ज्ञात हुआ कि बड़ी बहू ने उसकी प्रकृति के विषय में जो कुछ आलोचना की थी वह सर्वथा सत्य थी। यह दुस्साहस, यह पत्र उसकी कलम से कैसे निकला? उसने मेरी गर्दन पर तलवार भी चला दी होती तो भी मैं इतना द्वेष नहीं कर सकता। इतना योग्य और चतुर होने पर भी उसका हृदय इतना संकीर्ण है। विद्या का फल तो यह होना चाहिए कि मनुष्य में धैर्य और संतोष का विकास हो, ममत्व का दमन हो, हृदय उदार हो, न कि स्वार्थपरता, शुद्धता और शीलहीनता का भूत सिर चढ़ जाए। लड़कों ने शरारत की थी, डांट देते, झगड़ता मिटता, क्यों जरा सी बात का पतंगड़ बनाया। यह स्पष्ट विदित हो रहा है कि साथ निर्वाह न होगा। मैं कहाँ तक दबा करूँगा, मैं कहीं तक सिर झुकाऊँगा। खैर, उनकी जैसी इच्छा हो करें, मैं अपनी ओर से ऐसी कोई बात न करूँगा जिससे मेरी पीठ में धूल लगे। मकान बांटने को कहते हैं, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? घर का पर्दा खुल जाएगा, संबंधियों में घर घर इसकी चर्चा होगी। हाँ दुर्भाग्य, घर में 2 चूल्हे जलेंगे। जो बात कभी न हुई थी वह अब होगी। मेरे और मेरे प्रिय भाई के पुत्र के बीच केवल पड़ोसी का नाता रह जाएगा। वह जो जीवन पर्यंत साथ रहे, साथ खेले, साथ रोए, साथ हंसे, अब अलग हो जाएंगे। किंतु इसके सिवा और उपाय ही क्या है? लिख दूं कि तुम जैसे चाहो घर को बांट लो। क्यों कहूं कि मैं यह मकान लूंगा या कोठा लूंगा? जब अलग ही होते हैं तो जहां तक हो सके आपस में मनमुटाव न होने दें। यह सोच लाला प्रभाशंकर ने ज्ञानशंकर को पत्र का उत्तर लिख दिया। उन्हें अब भी आशा था कि मेरे उत्तर की नम्रता का ज्ञानशंकर पर कुछ अवश्य कुछ न कुछ असर होगा। क्या आश्चर्य कि वह अलग होने का विचार ही उसके दिल से अलग हो जाए। यह विचार कर उन्होंने पत्र का उत्तर लिख दिया और जवाब का इंतजार करने लगे। 11 बजे तक कोई जवाब ना आया। दयाशंकर कचहरी जाने लगे। बड़ी बहू आकर बोली, लल्लू के साथ तुम भी चले जाओ, आज तजवीज सुनाई जाएगी। जाने कैसी पढ़े कैसी न पढ़े। प्रभाशंकर ने अपने जीवन में कभी कचहरी के अंदर कदम न रखा था। दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो कचहरी का मुंह न देखें। यद्यपि इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कितनी बार हानियां उठानी पड़ी थी, कितनी भी बार बल खाना पड़ा था, विरोधियों के सामने झुकना पड़ा था, तथापि उन्होंने अब तक प्रतिज्ञा का पालन किया था। बड़ी बहू की बात सुनकर प्रभाशंकर बड़े असमंजस में पड़े। न तो जाते ही बनता था, न इनकार ही करते बनता था। मंगले झांकने लगे। दयाशंकर ने उन्हें द्विविधा में देखकर कुछ उदासीन भाव से कहा, आपका जीना चाहता हो न चलिए, मुझ पर जो कुछ पड़ेगी देख लूंगा। बड़ी बहू, नहीं चले जाएंगे, हरज क्या है? दयाशंकर, जब कभी कचहरी न गए तो अब कैसे जा सकते हैं? प्रतिज्ञा न टूट जाएगी? बड़ी बहू, भला ऐसी प्रतिज्ञा बहुत देखी है, लाओ कपड़े। दयाशंकर, नहीं मैं अकेले ही चला जाऊंगा, आपके चलने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दयाशंकर चले गए। बड़ी बहू भी पति को अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए घर में चली गई। प्रभाशंकर मन में बड़ी बहू पर झुंझला रहे थे कि इसने मेरे कचहरी जाने का प्रश्न क्यों उठाया, मैं वहां जाकर क्या बना लेता, हाकिम की कलम तो पकड़ नहीं लेता, न उसे कुछ विनम्र प्रार्थना ही कर सकता, और जब कभी न गया तो अब क्यों जाऊं? जिसने कांटे बोए हैं वह उनके फल खाएगा, इस फिक्र में कहां तक जान दो। वह इसी खिन्नावस्था में बैठे थे कि ज्ञानशंकर का दूसरा पत्र पहुंचा। उन्होंने संपूर्ण दीवान खाना लेने का निश्चय किया था। प्रभाशंकर ने सोचा मेरी नम्रता उसके क्रोध को शांत कर देगी। इस आशा के प्रतिकूल जब वह प्रस्ताव सामने आया तो उनका चित्त अस्थिर हो गया। पत्र के निश्चयात्मक शब्दों ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया, मौखला गए। क्रोध की जगह उनके हृदय में एक व्यवस्था का संचार हुआ। क्रोध प्रत्याघात की सामर्थ्य का द्योतक है, उनमें यह शक्ति निर्जीव हो गई थी। उस प्रस्ताव के भयंकर मूर्ति ने संग्राम की कल्पना तक मिटा दी। उस बालक की सी दशा हो गई थी जो हाथी को सामने देखकर मारे भाई के रोने लगे, उसे भागने तक की सुधि न रहे। उनका समस्त जीवन मात्र प्रेम की सुखद छाया में व्यतीत हुआ था। वह मनस्व और विरोध की यह ज्वाला समधूप असह्य हो गई। एक दीन प्रार्थी की भांति ज्ञानशंकर के पास गए और करुण स्वर में बोले, ज्ञानो ईश्वर के लिए इतनी विम्रवती न करो, मेरी वृद्धावस्था पर दया करो, मेरी आत्मा पर ऐसा निर्दय आघात मत करो। तुम सारा मकान ले लो, मेरे बाल बच्चों के लिए जहाँ चाहो थोड़ा सा स्थान दे दो, मैं उसी में अपना निर्वाह कर लूँगा। मेरे जीवन भर इसी प्रकार चलने दो, जब मर जाऊँ तो जो इच्छा हो करना, एक थाली में न खाओ एक घर में तो रहो, इतना संबंध तो बनाए रखो, मुझे दीवान खाने की जरूरत नहीं है। भला सोचो तो, तुम दीवान खाने में आकर रहोगे तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, नगर वाले क्या कहेंगे। सब कुछ हो गया है पर अभी तक तुम्हारी कुल की मर्यादा बनी हुई। हम दोनों भाई नगर में राम लखन की जोड़ी कहलाते थे। हमारे प्रेम और एकता की सारे नगर में उपमा दी जाती थी। किसी को यह कहने का अवसर मत दो कि एक ही भाई की आंखें बंद होते ही आपस में ऐसी अनबन हो गई है कि अब तक घर में रह भी नहीं सकते, यह प्रार्थना स्वीकार करो। ज्ञान शंकर पर इन विनयपूर्ण शब्दों का कुछ भी असर न हुआ। उनके विचार में यह विकृत भावुकता थी जो मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। हाँ, इस पर कृत्रिमता का संदेह नहीं हो सकता था। उन्हें विश्वास हो गया था कि चाचा साहब को इस समय हार्दिक वेदना हो रही है। वृद्धजनों का हृदय कोमल हुआ करता है। उन्होंने जन्म भर कुल प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादा के देवता की उपासना की है। इस समय अब कीर्ति का भाई चित्त को अस्थिर कर रहा है। बोले, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार रहे, पर यह तो विचार कीजिए कि इस पुराने घर में दो परिवारों का निर्वाह हो भी सकता है। रसोई का मकान केवल एक ही है, ऊपर सोने के लिए तीन कमरे हैं। आंगन कहने को तो है, किंतु वायु और प्रकाश का प्रवेश केवल एक ही में होता है। स्नान गृह की एक ही है। इन कष्टों को नित्य नहीं झेला जा सकता। हमारी आयु इतनी दीर्घ नहीं है कि उसका एक भाग कष्टों में ही भेंट किया जाए। आपकी कोमल आत्मा को इस परिवर्तन से दुख अवश्य होगा और मुझे आपसे पूर्ण सहानुभूति है, किंतु भावुकता के फेर में पड़कर अपने शारीरिक सुख और शांति का बलिदान करना मुझे पसंद नहीं। यदि आप भी इस विषय पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो मुझसे सहमत हो जाएंगे। प्रभाशंकर, मुझे तो इस बदनामी के सामने या असुविधाएं कुछ भी नहीं मालूम होती। जैसे अब तक काम चलता आ रहा है उसी भांति अब भी चल सकता है। ज्ञान शंकर, आपके और मेरे जीवन सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। आप भावों की आराधना करते हैं, मैं विचार का उपासक हूँ। आप निंदा के भय में प्रत्येक आपत्ति के सामने सिर झुकाएंगे, मैं अपने विचार स्वतंत्रता के सामने लोकपद के लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। जीवन आनंद से व्यतीत हो यह हमारा अभिष्ट है। यदि संसार स्वार्थपरकता कहकर उसकी हंसी उड़ाए, निंदा करे, तो मैं उसकी सम्मति को पैरों तले कुचल डालूंगा। आपकी शिष्टता का आधार ही आत्मघात है। आपके घर में चाहे उपवास होता हो, किंतु कोई मेहमान आ जाए तो आप ऋण लेकर उसका सत्कार करेंगे। मैं इसे मेहमान को दूर से ही प्रणाम करूंगा। आपके यहाँ जाड़े मेहमान लोग प्राय बिना ओढ़ना बिछोना लिए ही चले आते हैं। आप स्वयं जाड़ा खाते हैं पर मेहमानों के ओढ़ने बिछोने का प्रबंध अवश्य करते हैं। मेरे लिए यह अवस्था दूसरा है। किसी मनुष्य को चाहे वह हमारा निजी संबंधी क्यों न हो, यह अधिकार नहीं कि वह इस प्रकार मुझे असमंजस में डाले। मैं स्वयं किसी से आशा नहीं रखता। मैं तो इसे भी सर्वथा अनुचित समझता हूँ कि कोई असमय और बिना पूर्व सूचना के मेरे घर आए, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो। आपके आने तो दो चार ठल्ले नातेदार बड़े खाट तोड़ किए। आपकी जायदाद मुटियामेट हो गई, पर आपको कभी इशारे से भी उनकी अवहेलना नहीं की। मैं ऐसी घास पात को कदापि न जमने दूंगा जिससे जीवन के पौधे का ह्रास हो। लेकिन यह प्रथा अब काल विरुद्ध हो गई। यह जीवन संग्राम का युग है और यदि मुझको संसार में जीवित रहना है तो हमें विवश होकर नवीन और पुरुषोचित सिद्धांतों के अनुकूल बनना पड़ेगा। ज्ञान शंकर ने नई सभ्यता की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनका यह स्वयं व्यवहार न कर सकते थे, केवल उनसे मानसिक भक्ति रखते थे। प्राचीन प्रथा को मिटाना उनकी सामर्थ्य से परे था। निंदा और परिहास से सिद्धांत में चाहे न डरते हों पर प्रत्यक्ष उसकी अवज्ञा न कर सकते थे। आतिथ्य सत्कार और कुटुंब पालन को मन में चाहे अपव्यय समझते हों, पर उनके मित्र तथा संबंधियों को कभी उनकी असज्जनता की शिकायत नहीं हुई। किंतु साधारणतः उनका संभाषण विवाद का रूप धारण कर लिया करता था, इसलिए वह आवेश में ऐसे सिद्धांतों का समर्थन करने लगते थे जिनका अनुसरण करने का उन्हें कभी साहस न होता। लाला प्रभाशंकर समझ गए कि इसके सामने मेरी कुछ न चलेगी। उसके मन में जो बात ठन गई है उसे पूरा करके छोड़ेगा। इसे कुल मर्यादा की परवाह नहीं, उससे उदारता की आशा रखना व्यर्थ है। दुखित भाव से बोले, बेटा, मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ, तुम्हारे नई नई बातों को नहीं समझता। हम तो अपनी मान मर्यादा को प्राणों से भी प्रिय समझते थे। यदि घर में एक दूसरे का सिर काट लेते तो भी अलग होने का नाम नहीं लेते। लेकिन तुम्हारी इसमें हानि हो रही हो तो जो इच्छा हो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इतना फिर भी कहूँगा कि अभी दो चार दिन रुक जाओ। चाहे इतने दिन तकलीफ उठाइए, दो चार दिन और उठा लो। आज लल्लू के मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। हम लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं, दाना पानी हराम हो रहा है, जरा यह आग ठंडी हो जाने दो। ज्ञान शंकर में आत्मश्लाघा की मात्रा अधिक थी। उन्हें स्वभाव तो तुच्छता से घृणा थी, पर यही ममत्व अपना गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें कभी कभी धूर्तता की प्रेरणा दिया करता था, विशेषतः जब उसके प्रकट होने की कोई संभावना न होती थी। सहानुभूति पूर्ण भाव से बोले, इस विषय में आप निश्चिंत रहें। दयाशंकर केवल मुक्त ही नहीं बरी हो जाएंगे। उधर के गवाह जैसे बिगड़े हैं वो आपको मालूम ही है। इस पर भी सबको शंका थी कि ज्वाला सिंह जरूर दबाव में आ जाएंगे। ऐसी दशा मुझे कैसे चैन आ सकता था। मैं आज प्रातःकाल उनके पास गया था और परमात्मा ने मेरी लाज रख ली। यह कोई कहने की बात नहीं है, पर मैंने अपने सामने फैसला लिखवा कर पढ़ लिया, तब उनका पिंड छोड़ा। पहले तो महाशय देर तक पगड़े झांकते रहे, टाल मटोल करते रहे, पर मैंने ऐसा फटकारा कि अंत में लज्जित होकर उन्हें फैसला लिखना ही पड़ा। मैंने कहा, महाशय आप मेरे ही बदौलत BA की डिग्री पाई है, इसे मत भूलिए। यदि आप मेरा इतना ही लिहाज न करेंगे तो मैं समझूंगा कि एहसास संसार से उठ गया। प्रभाशंकर ने ज्ञान बाबू को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि भैया साक्षात सामने खड़े हैं और मेरे सिर पर रक्षा का हाथ रखे हुए हैं। अगर अवस्था बाधक न होती तो वह ज्ञान शंकर के पैरों पर गिर पड़ते और उसे आंसू की बूंदों से तर कर देते। उन्हें लज्जा कि मैंने ऐसे कर्तव्यपरायण, ऐसे न्यायशील, ऐसे दयालु, ऐसे देवतुल्य पुरुष का तिरस्कार किया। यह मेरी उद्दंडता थी कि मैंने उससे दयाशंकर की सिफारिश करने का आग्रह किया। वह सर्वथा अनुचित था। आजकल के सुशिक्षित युवक गण अपना कर्तव्य स्वयं समझते हैं और अपनी इच्छानुकूल उसका पालन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें किसी की प्रेरणा अप्रिय लगती है। बोले, बेटा यह समाचार सुनकर मुझे कितना हर्ष हो रहा है वो प्रकट नहीं कर सकता। तुमने मुझे प्राणदान दिया है और कुल की मर्यादा रख ली। मेरा रोम रोम तुम्हारा अनुग्रहित है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि भैया देवलोक में बैठे हुए भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे अत्यंत खेद है कि मैंने तुम्हें कटु शब्द कहे। परमात्मा मुझे इसका दंड दे, मेरे अपराध को क्षमा करे। बुढ़े आदमी चिचड़े हुआ करते हैं, उनकी बातों को बुरा न मानना चाहिए। मैंने अब तक तुम्हारा अंतर स्वरूप न देखा था, तुम्हारे उच्चादर्शों से अनभिज्ञ था। मुझे यह स्वीकार करते हुए खेद होता है कि मैंने तुम्हें अपना अशुभ चिंतक समझने लगा था, पर अब मुझे तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम और तुम्हारी उदारता का अनुभव हुआ। मुझे इस मतिभ्रम का सदैव पछतावा रहेगा। यह कहते कहते लाला प्रभाशंकर का गला भर आया। हृदय पर जमा हुआ बर्फ पिघल गया, आंखों से जलबिंदु गिरने लगे, किंतु ज्ञान शंकर के मुख से सांत्वना का एक शब्द भी न निकला। वह इस कपटान विनय का रंग भी गहरा न कर सके। प्रभाशंकर की सरलता, अश्रद्धालुता और निर्मलता के आकाश में उन्हें अपनी स्वार्थंधता, कपटशीलता और मलिनता अत्यंत कालिमापूर्ण और ग्लानिमय दिखाई देने लगी। वह स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर गए। इस कपट कांड का आनंद न उठा सके। शिक्षित आत्मा इतनी दुर्बल नहीं हो सकती। इस विशुद्ध वात्सल्य ध्वनि ने उनकी सोई आत्मा को एक क्षण के लिए जगा दिया। उसने आंखें खोली, देखा कि मन मुझे कांटों में घसीट लिए चला जाता है। वो अड़ गई, धरती पर पैर जमा दिए और निश्चय कर लिया कि इसे आगे न बढ़ेंगे। सहसा सैयद इजाद हुसैन मुस्कुराते हुए दीवान खाने में आए। प्रभाशंकर ने उनकी ओर आशाभर नेत्रों से पूछा, कहिए कुशल तो है? इजाद, सब खुदा का फजलो करम है, लाइए मुँह मीठा कराइए। खुदा गवाह है कि सुबह से अब तक पानी का एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं गया। बारे खुदा ने आप रख ली, बाजी अपनी रही, बेदाग छुड़ा लाए, आज तक ना आई। यह हक है कि जितनी उम्मीद है कि उसे कुछ ज़्यादा ही कामयाबी हुई। ये ज्वाला सिंह से ऐसी उम्मीद न थी। प्रभाशंकर, ज्ञानो यह तुम्हारी सत्प्रेरणा का फल है, ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी करें। इजाद, बेशक बेशक, इस कामयाबी का सहरा आपके ही सिर है। मैंने भी जो कुछ किया है आपकी बदौलत किया है। आपका आज सुबह को उनके पास जाना काम कर गया। कल मैंने इन्हीं हाथों से तजवीज़ लिखी थी और सरासर हमारे खिलाफ थी। आज जो तजवीज़ उन्होंने सुनाई वह कोई और ही चीज़ है। यह सब आपकी मुलाकात का नतीजा है। आपने उनसे जो बातें की और जिस तरीके से उन्हें रास्ते पर लाए, उन्हें हर्फ बहर्फ इतला मुझे मिल चुकी है। अगर आपने अपनी इतनी सबगोई से काम न किया होता तो वही हजरत पंजे में आने वाले न थे। प्रभाशंकर, बेटा आज भैया होते तो तुम्हारा सदुद्योग देखकर उनकी गज भर की छाती हो जाती। तुमने उनका सिर ऊंचा कर दिया। ज्ञान शंकर देख रहे थे कि इजाद हुसैन चचा साहब के साथ कैसे दाव खेल रहा है और मेरा मुंह बंद करने के लिए कैसी कपट नीति से काम ले रहा है। अगर कुछ बोल न सकते थे, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मैं ऐसे दुर्बल प्रकृति के मनुष्य को उसके कुटिल स्वार्थ साधन में योग देने पर बाध्य हो रहा हूँ। मैंने कीचड़ में पैर रखा और प्रतिक्षण नीचे की ओर फिसलता चला जाता हूँ।